التفسير देखते हैं। سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم। अनकरीब बेवकूफ लोग कहेंगे, किस चीज ने इनको इनके किबले से फेर दिया जिस पर ये थे? कह दीजिए कि बेशक अल्लाह ही का है मशरिक और मगरिब, और जिसे चाहता है सीधी राह पर चला देता है। यहाँ से सबक का आगाज़ भी है और पारे का आगाज़ भी है। आयात पे बराह रास्त जाने से पहले कुछ बातें जो हमें फिर इस बात को समझने में मददगार साबित होंगी। पिछले दो रुकू में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नाते से एक चीज़ देखी, और वो क्या कि उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर की। लेकिन ये बैतुल्लाह की तामीर जो थी पहली दफ़ा नहीं थी। रिवायात से ये चीज़ साबित होती है कि बैतुल्लाह शुरू से मौजूद है, और सबसे पहले फ़रिश्तों ने बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किबला भी यही था, लेकिन जब तूफ़ान नूह आया तो उसमें बैतुल्लाह की जो दीवारें थी या ऊपर की जो बिल्डिंग थी वो गिर गई या उसको उठा लिया गया। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये खिदमत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ली, और खाना काबा को दोबारा तामीर किया गया। इसलिए हज़रत नूह से लेके हर नबी ने इसी किबले की पैरवी की। सूरत आल इमरान में भी यही बात है कि इन अव्वल बैत यहूदी लिन्नास इल्लज़ी बिबक्का, कि पहला घर जो दुनिया में इंसानों की इबादत के लिए बनाया गया ये वही है जो मक्का में है। तो पहली चीज़ समझने की है वो क्या कि शुरू से लेके हर नबी ने बैतुल्ला यानी खाना काबा ही को अपना मरकज़ इबादत बनाया, और उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी जाती थी। लेकिन बनी इसराइल के अंदर जहाँ के अल्लाह के हुक्मों को बदलने की आदत पैदा हो चुकी थी, वहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इन लोगों के अंदर ये चीज़ भी आ गई कि इन्होंने बैतुल्लाह को छोड़कर बैतुल मक़दस को, जिसको यरूशलम में यरूशलम के नाम पे या मस्जिद अक्सा के नाम पे हम जानते हैं, उसको अपना घर बना लिया। बैतुल मक़दस बैतुल्लाह की बजाय बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। अब होते होते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ज़माना आया, तो शुरू में आप 13 साल मक्का में रहे। मक्का में रहते हुए आप जब इबादत के लिए खड़े होते तो आप इस तरीके से खड़े होते थे कि आपका रुख शमाल की तरफ होता, काबा आपके बिल्कुल सामने होता, और उसी की सीध में अगर आप सोचें तो बैतुल मक़दस आता। जो लोग थोड़ा सा भी नक्शे को जानते हैं वो देख सकते हैं कि सबसे पहले मक्का है, फिर उसके बाद कुछ 100 मील के ऊपर मदीना है, और उसी सीध में अगर आप सीधा जाते जाएं तो मुल्क शाम है जहाँ पे बैतुल मक़दस है। तो लिहाजा जब बैतुल्लाह में कोई खड़ा हो और इस तरीके से खड़ा हो कि शमाल की समय सामने हो, तो ना सिर्फ ये कि बैतुल्लाह को सजा हो जाता है बल्कि बैतुल मक़दस को भी हो जाता है। इस तरह से इस्तक़बाले क़िबलतैन यानी दो किबलों को सामने करना, ये मक्का के दौर में होता रहा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में किसी रहनुमाई की ज़रूरत महसूस ना हुई। 13 साल मक्का के इसी तरह गुजरते गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहे। लेकिन जब आप हिजरत करके मदीना में आए तो फिर ये सवाल जहन में उठा कि अब नमाज किस तरफ मुँह करके पढ़ी जाए, क्योंकि जब अल्लाह के नबी सल्लम बैतुल्लाह की तरफ मुंह करते तो ला मुहाला तौर पे बैतुल मक़दस बिल्कुल पीछे रह जाता, क्योंकि मदीना बीच में है। आप मक्का की तरफ मुंह करते तो दूसरी तरफ पीछे हो जाता, और उधर मुंह करते तो फिर मुंह आपका जो था वो बैतुल्लाह से मुख्तलिफ होता। अब उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया ये कुरान पाक में कहीं नहीं मिलता, और ये मसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस के ज़रिए से बताया गया, आपके ऊपर वही खफ़ी के ज़रिए से ये बात हुई, या आपका अपना इज्तिहाद था, बाज ने ये तक कहा, लेकिन कुरान पाक में ये हुक्म कहीं भी नहीं मिलता कि मदीना आने के बाद آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن روایات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ 16 یا 17 16 to 17 months نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس صورت میں قبلہ جو تھا بیت المقدس بنتا تو خانہ کعبہ بالکل پیچھے رہتا، لیکن چونکہ شروع سے آپ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے آئے تھے، سارے انبیاء کرام کا قبلہ بھی وہی تھا، اور یہود اور نصارہ کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ آخری نبی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اور اس کی امت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم مل جائے. اس نیت سے، اس امید سے آپ آسمان کی طرف دیکھتے امید بھری نگاہوں کے ساتھ، لہٰذا آپ کی امید پوری ہوئی جب آپ ایک موقع پہ کسی جگہ دوسروں کے ساتھ مل کر ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے. 2 رکعتیں ادا ہو چکی تھی، 3ری رکعت کے رکوع میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے، لہٰذا اب آپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے. چنانچہ آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بدلا، اور یہ رجب یا شعبان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں حکم نازل ہوا تھا. ابن سعد کی روایت میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی بشر بن برا ایک صحابی کے گھر میں ایک دعوت میں تھے. ظہر کا وقت ہوا، آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھا چکے. 3ری رکعت میں وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی جو اسی رکوع میں آئے گی، ہم دیکھیں گے آج کے سبق میں. تو آپ کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ تھے رکوع ہی کی حالت میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر گئے، اور اس کے بعد پھر مدینہ اور اس کے اطراف میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اب قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا. اور برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ جب مدادی کی آواز گئی تو لوگ رکوع کی حالت میں تھے، حکم سنتے ہی اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے. اسی طرح حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی، کیونکہ اس وقت اتنا کمیونیکیشن سٹرانگ نہیں تھا کہ ایک منٹ میں ساری دنیا میں خبر پھیل جائے، تو جہاں جہاں خبر پہنچتی گئی لوگ کرتے گئے، حتیٰ کہ بنی سلمہ اور اسی طرح قبا کے لوگ جو ہیں ان تک اگلے دن کی فجر کے وقت بات پہنچی. لوگ 1 رکعت نماز پڑھ چکے تھے اور ان کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی کہ قبلہ بدل چکا ہے تو فوراً ہی سب نے اپنا رخ بدل دیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ سب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. اور یہ تبدیلی کے 19-20 کی تبدیلی نہیں تھی، بالکل مشرق سے مغرب تھی. حتیٰ کہ یہ ترتیب اس طرح سے پلٹی کہ جو عورتوں کی صفیں پیچھے ہوتی ہیں وہ مردوں کی جگہ پہ آئیں اور مرد آگے آئے. ذرا تصور میں لیں کہ کہاں سے امام کو گھوم کے واپس پورا پلٹ کے آنا پڑا، اور بالکل جیسے اپ سائڈ ڈاؤن کہہ لیں، یعنی ادھر سے چیز ادھر ہوئی، لیکن کسی نے کوئی چوچرا نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، اور اللہ کا حکم مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہمیشہ ہی باتیں پکڑنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس پہ بہت سارے فتنے اٹھائے، اور ان کو یہ تھا کہ یہ کیسا دین ہے کہ بار بار ہمیں مختلف قسم کے حکم دیتا ہے. ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی تھے اور مرتد ہو گئے. کبھی بھی کوئی قبلہ تبدیل ہوتا ہے نا تو بہت شور اٹھتا ہے سوسائٹی میں، چاہے وہ خانہ کعبہ کی طرف مڑنا ہو یا زندگی کو بے دینی سے دین کی طرف لانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئے، لوگ بہت زیادہ شور مچانے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ وہ شور اٹھتا اور وہ مسئلہ پیدا ہوتا، اپنے نبی کو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہی خبر کر دی. کیا؟ کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب بے وقوفوں میں سے کچھ لوگ، یا لوگوں میں سے کچھ کم عقل لوگ یہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مَا وَاللَّهُمْ، کس چیز نے پھیر دیا ان کو؟ وَاللَّا يُوَلِّي تَوَلِّيَتْ، کہتے ہیں پھرنے کو، یعنی پوری سائڈ کے ساتھ پلٹنا، چہرے کا بھی پلٹ جانا. यानी अन करीब सुफाहा सफीहुन की जमा है और सिफाहत हम पीछे देख चुके पिछले पारे के अंदर के बेवकूफ़ी दो वजह से होती है, कम इल्मी की वजह से और तासुब की वजह से या कम इल्मी और कम अक्ली की वजह से होती है। तो यहाँ इससे मुराद कौन है सुफहा से? मुसलमानों के वो लोग जिनके दिलों में भी ईमान पूरा नहीं आया था, फितनों की तलाश में रहते थे, अभी ईमान ने जड़ें नहीं पकड़ी थी दिल के अंदर और हवा चलते ही वो दरख्त गिरने लगते हैं। इसी तरह सुफहा से बतौर ख़ास जहाँ मुराद मदीना में रहने वाले यहूद थे और उन यहूद में से भी उनके उलमा, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी को एक्सप्लॉयट करने वाले जोश दिलाने वाले अमूमन मजहबी रहनुमा ही होते हैं। तो मजहबी रहनुमाओं ने ये शोर मचा दिया कि देखो देखो एक और बात इनकी पता चल गई, और वो क्या कि कल तक एक किबले पे थे आज दूसरे पे। अब इनसे पूछो कि पिछला ठीक था या ये ठीक है या क्या ये दोनों ही ठीक हैं। यानी प्रोपेगंडे से बचने के लिए अभी हुक्म नहीं आया, जहाँ आयत आएगी तो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ देखिए तकदीम और ताखीर है। तकदीम क्या कहते हैं? कोई चीज़ जो अभी होनी थी उसको वक्त से पहले ले गए। मसलन कोई काम 2 बजे होना था और 12 बजे उसकी बात कर दी। और ताखीर क्या होती है? कि जो काम 12 बजे होना था उसको थोड़ा सा डिले किया, उसका एतराज़ उसकी बात ना की और उसको 2 बजे तक ले गए। तो कुरान पाक की कुछ आयात में नज़ूल के एतबार से या हालात और वाक़ियात के एतबार से तकदीम और ताखीर होती है। आप ये कह सकते हैं बात को आसान समझने के लिए कि सयकूल वाली आयत 142 आयत जो नाजिल हुई, तो अल्लाह ताला ने आने वाले एक फितने और एक प्रोपेगंडे के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से तैयार कर दिया। क्योंकि मैंने बास लोगों की ज़ुबान से इस आयत की तफसीर में ये बात भी सुनी है कि लोग कहते हैं कि ये आयत किबले की तब्दीली के मौके पर नाजिल हुई। नहीं, ये आयत किबले की तब्दीली के हुक्म से पहले नासिल हुई। वो आयत अभी आने वाली है और यही अंदाज़ हमें सूरह तौबा में भी मिलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वे तबूक से वापस आ रहे थे तो आपको रास्ते में खबर दे दी थी कि या तज़ीरून इलैक, आपकी तरफ लोग आएंगे बुज़र बांधते हुए और बहाने करके सच्चे झूठे उज़र करके आपकी नज़रों में सच्चा बनेंगे, तो आप उनके बारे में मुख्तात रहिएगा। तो ये अंदाज़ बहुत जगह मिलता है कि अल्लाह ताला वक्त से पहले ही नबी को बता देता है कि अब ये तूफ़ान उठने वाला है। और हकीकत ये है कि जो बंदा भी दीन की तरफ आएगा उसकी तरफ भी प्रोपेगंडों का रुख होने लगेगा, तूफ़ान उठते रहेंगे। और ख़ास तौर पे वो लोग जो एक ख़ास किस्म की ज़हनी सोच रखते हैं, जिनकी मजहबी ज़हनियत होती है, वो आमाल की रूह की बजाय ज़ाहरी चीज़ों के ऊपर इतनी तवज्जो देने लगते हैं कि इन चीज़ों को इतना ज़्यादा मतलब प्रमोट करने लगते हैं, इन चीज़ों को इतनी हवा देने लगते हैं कि लोगों को बज़ाहर चीज़ों में उलझाकर किबला किधर हो, क्या हो, कैसे किया जाए, इबादत के ज़ाहरी रिचुअल्स, हाथ कहाँ बांधे जाएँ, रफुलदैन किया जाए कि ना किया जाए, इस तरह की चीज़ों में कौम को इतना उलझा देते हैं कि उन कामों का, उन इबादात की असल रूह ख़त्म हो जाती है। यहाँ असल में अल्लाह ताला ने उन लोगों की सोच की अक्कासी की है कि जो असल हुक्म को मानने की बजाय ज़ाहरी चीज़ों को मानते हैं। क्या अल्लाह ताला कहते हैं, क्या कहेंगे ये लोग, मा वल्लाहुम, किसने फिर दिया इनको, हम कौन है इधर मुसलमान जो उस वक़्त मौजूद थे मदीना में, किसने फेर दिया इनको, अन क़िबलतिहिम, इनके क़िबले से, अल्लती कानू अलैहा, जिस पर वो थे। कौन सा क़िबला था वो? पहला क़िबला कौन सा, आप देखिए बैतुल मक़दस। अच्छा, लफ्ज़ क्या होता है? मुक़दस, मक़दस, मफ़अल का वज़न होता है। अन क़िबलतिहिमुल्लती से मुराद बैतुल मक़दस है, कानू अलैहा, जिस पर ये थे। ये कानू अलैहा की ड्यूरेशन कितनी है? 16 से 17 महीने, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए? माफ़ियाँ मांगी जाएं, सफाइयाँ पेश की जाएं, माजरत की जाए, सॉरी सॉरी नो एक्चुअली एक्चुअली ओ बेसिकली बेसिकली, नहीं ये अंदाज़ कहीं नहीं है। और कुरान पाक ही से हम फितनों और प्रोपेगंडों से निबटने का तरीका सीखेंगे। अल्लाह ताला इनको कुछ नहीं कह रहे, ना जवाब में कह रहे हैं तुम्हें क्या, हम कौन, तुम कौन, हम सही नहीं, खाना काबा ठीक है, अल्लाह की कसम ये पहला काबा था, नहीं तुमने सुलेमान के दौर में बदला, कुछ नहीं सिखाया, बस बात पलट दो। قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, अरे भाई इससे क्या होता है, मशरक भी अल्लाह का है और मगरिब भी अल्लाह का है, क्यों बहसें करते हो, क्यों झगड़े करते हो, खाना काबा जो है वो तो एक वहदत के लिए है, वो तो उम्मत को जमा करने के लिए है, एक नुक्ते पे फोकस करने के लिए है, असल इबादत तो अल्लाह की जाती है। यहाँ ये बात भी नोट करने की ज़रूरत है कि हम मुसलमान खाना काबा को सजदा नहीं करते, हम बैतुल्ला को सजदा नहीं करते, क्यों? अगर हमने काबा को सजदा किया तो वो भी तो पत्थरों से बना हुआ एक घर ही है, तो फिर अगर पत्थर के बने हुए किसी बुत के आगे कोई हिंदू झुकता है तो उस बेचारे का क्या कसूर? बहुत सारे मुसलमान नासमझी में ये कह देते हैं कि हम बैतुल्ला को सजदा करते हैं, हम बैतुल्ला को सजदा नहीं करते। सूरत कुरैश में आता है, ली ईलाफ़ी कुरैश ईलाफ़िहिम रहलतश शिताई वस्सैफ फलयाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, ये बहुत अहम नुक्ता है। हम ये नहीं कहते फलयाबुदु हाज़ल बैत, इस घर की इबादत करो, नहीं रब्ब हाज़ल बैत, अल्लाह की इबादत में खाना काबा की तरफ हम मुँह करते हैं, तो असल फिर इबादत काबा की नहीं है, सजदा काबा को नहीं किया जा रहा, बल्कि अल्लाह की ज़ात तो मशरिक और मगरिब की सारी जहतों से पाक है, वो तो बिल्कुल बेनियाज है किसी चीज़ से। उसका हाल तो क्या है कि इंसान जब उसको पुकारता है वो हर बंदे के दिल की बात सुनता है, उसके अंदर के हालात को जानता है, लेकिन अगर हम लोग अल्लाह ताला की इन बातों को छोड़कर सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझ जाते हैं तो गोया के हमने दीन की ज़ाहरियत पे बात की, नहीं यह दी में ही यशाओ वो राह चलाता है, वो दिखाता है राह, वो चलाता है जिसको चाहता है, इला सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते पे। गोया के इस एक आयत में अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें हमें बता दी। पहली बात ये बता दी कि किसी की मोहब्बत की ये दलील होती है कि आने वाले वक्त के लिए उसको तैयार कर दे। माँ बाप को भी ये काम करना चाहिए, अपने बच्चों को किसी मुश्किल का शिकार होने से पहले ही वॉर्न कर दिया जाए, आगाह कर दिया जाए कि ये मसाइल पेश आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी बड़े से बड़े फितने या ऐसी चीज़ के जिससे एकदम हा हू शुरू हो जाए, घबराना नहीं चाहिए। मुहालिफीन की आदत ही होती है एतराज़ करने की, और जो लोग गलतियां चुनने के लिए बैठे होते हैं उनको कोई ना कोई गलती मिल जाती है, लेकिन इंसान को घबराना नहीं चाहिए। बंदा जब अपना मुहासबा करता रहे, अल्लाह ताला की ज़ात को सामने रखे, तो फिर वो इन बातों से नहीं घबराता। अगली बात ये पता चलती है कि किबला जो है वो मकसद इबादत नहीं है, एक जहत दी गई। थोड़ी सी हम इस पे भी बात करेंगे कि लफ्ज़ किबला क्या होता है। देखिए किबला का लफ्ज़ काफ़ बा लाम से है, मुकाबिल का लफ्ज़ इसी से आता है, कबूल का लफ्ज़ मुकाबला, आमने सामने की बात है, यानी सिमत तवज्जो, वो चीज़ जिसकी तरफ रुख किया जाए। अब देखिए कि मोमिन का रुख तो हर इबादत में सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ होता है, उसकी ज़ात तो मशरिक और मगरिब, शमाल और जनूब की कैद और सिमत से बालातर है। किसी ख़ास तरफ रुख करें तो अल्लाह ताला दिखे और दूसरी तरफ रुख करें तो ना दिखे, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने हम सबको उम्मत बनने के नाते से एक वहदत में पिरोया है। दुनिया में इस्लाम से हटके अगर हम देखें तो अमूमन लोगों को किन चीज़ों के अंदर बांटा गया? किसी ने रंग की बुनियाद पे क्लासिफाई किया लोगों को, गोरे के सूरत में, काले के सूरत में। किसी ने ज़ुबान की बुनियाद पे जमा करना चाहा, अरबी और अजमी के फ़र्क के साथ। किसी ने कौमियत के नाम पे जमा किया, हम एक कौम और दूसरे दूसरी कौम। किसी ने दौलत के नाम पे क्लासिफाई किया कि ये अमीर मुल्क हैं और ये गरीब मुल्क हैं। किसी ने मशरकी और मगरबी मुल्कों के नाम पे लोगों को जोड़ना चाहा। नतीजा क्या हुआ? सारी बांट गैर फितरी है। इस्लाम ने ना हमें जुग्राफियाई हदों पे बंद किया कि तुम सारे मक्का में चले जाओ, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कूच का हुक्म दिया जाता, सारे सऊदी अरब में जाओ, मक्का और मदीना में बैठ जाओ और बस ये है तुम्हारी पहचान। ना इस्लाम ने हमें कोई यूनिफॉर्म दिया। कभी आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम की ज़िंदगी को अगर पढ़ा है तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई एक ख़ास यूनिफॉर्म था मुसलमानों का। कोई रंग इस्लामी रंग नहीं है, कोई जुब्बा कोई लिबास इस्लामी लिबास नहीं होता। ठीक है, अल्लाह के नबी जो पहनते थे उसको देख के हम उस मोहब्बत में पहने, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज नहीं किया। ना कोई तिलक हमारा मजहबी निशान है, ना कोई मांग में रंग भरना हमारा निशान है, लेकिन इस्लाम ने जो वहदत दी है ना, वो अकीदे की वहदत है, फिक्र और ख्याल की वहदत है। एक रब के पुजारी कहीं भी हो, किसी रंग के हो, किसी मुल्क में हो, माली तौर पे मुहकम हो या कमज़ोर हो, वो मुसलमान है। सिबगत अल्लाह ही व मन अहसन मिन अल्लाह ही सिबगतन वाली बात कि अल्लाह का रंग रंगा जाता है बंदा उसमें, और फिर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अब हुआ क्या कि सारी दुनिया में मुसलमान रह सकते हैं, मुसलमान अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, तो ज़रूरत पेश आती है कि सारी दुनिया के मुसलमानों को एक नुक्ते पे जोड़ा जाए, और वो नुक्ता क्या है? क़िबला, खाना काबा। बस क़िबले की जो अहमियत है, या मुसलमान नमाज में एक ख़ास डायरेक्शन की तरफ मुंह जो करते हैं, उसकी वजह इबादत नहीं है, यूनिटी है, वहदत है। मसलन इस हॉल में हम जितने साथी बैठे हैं, अगर नमाज का वक्त आ जाए और कहा जाए जो जिधर मुंह करके मर्जी नमाज पढ़ ले, तो आप सोचिए क्या नमाज पढ़नी मुमकिन रहेगी? टकराव होगा ना। किसी को नहीं पता कि अभी कौन किस पल रुकू गिर जाएगा, कौन किसके सर के ऊपर सजदा कर देगा। इसकी बजाय अगर कहा जाए कि सफ़े बना लें, तो आप देखिए कि इस हॉल को भी हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो सारे यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने उम्मत को डिसिप्लिन सिखाया। नतीजा क्या निकला कि आपने ये बात बता दी कि सारी उम्मत जो है वो एक ही तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेगी और बस, लेकिन तवज्जो अल्लाह की तरफ रहेगी। बस लोग जब दीन के नाम पे शिद्दत का शिकार होते हैं तो वो इतनी बारीक लाइन खींचना चाहते हैं कि 19-20 का फर्क हो जाए किबले के तयन में, तो वो फतवे दे देंगे कि आपकी नमाज नहीं हुई। कंपस के साथ यूज करते हैं कि यानी एक सीधी लाइन, जैसे अगर 19-20 का फर्क पड़ जाए तो लोग कहते हैं नमाज नहीं हुई। लेकिन जिस अल्लाह की जात ने हमें खाना काबा की तरफ हुक्म कर दिया कि नमाज पढ़ो, और जिस नबी की इत्तबा में हम पढ़ते हैं, उन्होंने सिर्फ हमें नमाजों का किबला नहीं सिखाया, उन्होंने हमें शादियों के किबले भी सिखाए, उन्होंने हमें मौत के किबले भी सिखाए, उन्होंने तिजारत के किबले भी दुरुस्त कराए, उन्होंने जीना मरना खाना पीना पहनना ओढ़ना सब सिखाया। हर काम करते हुए हम मनमानी करना चाहते हैं, अपनी बिरादरी को देखना चाहते हैं, अपने खानदान को देखना चाहते हैं, लेकिन जो ही नमाज की बात आती है तो शिद्दत बरतने लगते हैं। ये दुरुस्त बात नहीं। ये एक चीज़ को लेना और दूसरी चीज़ को छोड़ना है। अफतू मेनू नबी बात दिल किताबी व तक फुरू नबी बात। तो अल्लाह ताला ने यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि देखिए आपके ऊपर बड़ी बातें होने वाली हैं, गम ना करें। और हकीकत है कि जब आप दीन की तरफ आते हैं, थोड़े दिन के बाद आपको कोई ना कोई बात सुननी ही पड़ती है। ये दीन की शान है, घबराइए नहीं, हर तूफान अपने वक्त पे ख़त्म हो जाता है। आपको किसी किस्म का दिफा करने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, यहाँ ये बात पता चल गई कि बात बे बात पे एतराज़ करना ये बेवकूफ़ों की अलामत होती है। कितनी वाज़े बात है, सुफहा का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, यानी बेवकूफ़ कौन है असल में? जो अल्लाह के फैसलों पर एतराज़ करे, तकदीर पर एतराज़ करे, अल्लाह ताला के अहकामात पर एतराज़ करे, किताब के हुक्मों पर एतराज़ करे। और अल्लाह ताला कहते हैं मिनन नास, ईमान वाले नहीं का, मिनल मोमिनीन नहीं का, क्योंकि ईमान वाला اس طرح کی بیوقوفیاں نہیں کر سکتا، کیونکہ مومن کبھی بیوقوف اور احمق نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کیا فرمایا، ان کو یہ بات بتانے کے بعد، بس ابھی ذہنی تیاری کر دی، ذہن سازی کر دی اور بتا دیا گیا کہ ان باتوں میں الجھنا نہیں، صفائی نہ پیش کرنا، کیونکہ تم جتنی صفائی پیش کرو گے وہ تمہیں اتنا ہی اور تنگ کریں گے۔ یہاں ایک یہ بھی پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ فتنوں کو دبانے کا طریقہ بھی بتا دیا، کبھی کوئی آپ کے خلاف بات کرے، خاندان میں، آپ کے ساتھ رہنے والوں میں، ایک گھر میں رہتے ہوئے، نن بھابھی کا، بھابھی نن کا، ساس بہو کا، ماں بیٹی کا، کسی کا کوئی معاملہ ہو اور آپ سمجھیں کہ ایک بیچ میں ہے اور چاروں طرف سے آپ پہ باتیں پڑ رہی ہیں، تو آپ نے ان کی باتوں کو دہرانا نہیں ہے، نہ یہ کہنا اللہ کی قسم نہیں۔ عموماً لوگ کیا تر رونے لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے آنسو بہاتے ہیں، نہیں خدا کی قسم ہم ایسے نہیں، میں نے اس نیت سے نہیں کہا تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، آپ کو کیا پتہ میں کتنی مخلص ہوں۔ کوئی کہہ رہا نا، پہلے چپ کر کے سنیں، آپ چپ ہو جائیں گے نا تو کہنے لگا، خود ہی کانپنے لگے، یہ کیا ہوا، کچھ غلط تو نہیں کر، پوری بات کرنے دیں۔ مثال ہے کوئی آپ کے منہ پہ آ کے کوئی بات کہہ دے، آپ کیا فتنے پھیلا رہے ہیں، آپ کیا کام کر رہے ہیں، بجائے آپ اس کے صفائی پیش کریں، آپ کہیں جی اور کچھ، اور کچھ، اچھا ٹھیک ہے پھر خدا حافظ، یعنی ایک لفظ سے بھی اس کا جواب نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ پہ لوگ آ کے کہا کرتے تھے کہ آپ مذمم ہیں، تو آپ کہتے پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، میں تو محمد ہوں، بس چل پڑے۔ نہ آپ نے کوئی صفائی پیش کی، نہ آنسو بہائے، نہ روئے، نہ دھوئے۔ ہمارے معاشرتی مسائل میں سے 60-70% مسائل صرف اس ایک عادت پہ عمل کرنے سے ختم ہو سکتے ہیں، گھریلو سیاست ہو یا خاندانی سیاست ہو۔ آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں، صرف بیان بازی ہوتی ہے، فلاں جماعت کے لیڈر نے یہ بیان دیا، اگلے دن اسی جگہ پہ اس جو لیڈر ہے اس کی صفائی پیش کی جاتی ہے، ہمارے خلاف یہ بات کی گئی، ہم آئے آپ کو صفائی پیش کرتے ہیں، تیسرے دن کے اخبار میں وہ پہلے والا پھر اس کا کوئی اور اینگل کھولتا ہے۔ یہی حال آج دینداروں میں ہونے لگا، ایک دیندار اٹھ کے تقریر کرتا ہے، دوسرا اس کے خلاف پھر بیان دیتا ہے کہ دیکھیں یہ ایسے کرتے ہیں، پھر تیسرا اس دن اس دوسرے کے اوپر بات کرتا ہے اور کشتی اور اکھاڑا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل للہ المشرق والمغرب، انہوں نے یہ بات پوچھی تھی کہ مشرق اور مغرب کس کا ہے؟ نہیں پوچھی تھی، تو پتہ چلا کہ بات بدل دو، کھانا کھائیں گی آپ، چائے پئیں گے آپ، اوکے کہ یہ میں نے کس کو کہہ دیا، کوئی آپ کا سر بھی پھاڑنے آ رہا ہے نا آپ کے گھر میں تو کام پہ نہیں، دروازہ کھول کے بیٹھیں، بولنے دے بولنے دے، پھر آپ کیا ہی بیٹھیے نا، آئے میں آپ کی مدد کروں کوٹ اتارنے میں، آئے میں آپ کا جوتا اتاروں۔ کل وتھ کائنڈنس، اللہ کے نبی نے جو انقلاب برپا کیا تھا نا وہ لوگوں کے مقابلے کر کے نہیں کیا تھا، اور اللہ کرے آج کے دینی رہنماؤں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ممبروں پہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے کی بجائے اپنے قبلے درست کرنے کی کوشش کر لی جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات دیکھیے، اصل اب جو قبلے کی تبدیلی کے پیچھے حقیقت چھپی ہوئی تھی نا اس کو کھولا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے آپ کو امت وسط بنایا تاکہ آپ لوگوں پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دینے والا بن جائے، یعنی رسول تمہارے اوپر اس بات کی گواہی دے کہ تم اس بات کو سن کر ماننے والے ہو۔ یہ ہے علت، عین لام تا، علت کہتے ہیں وجہ کو، ویسے تو بیماری کو کہتے ہیں، علیل کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اسی سے ہے یہ، اسی روٹ سے۔ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم کیوں دیا گیا؟ بظاہر یہ ایک مرکز عبادت کا بدلنا تھا، ایسے ہی جیسے ایک ہال سے نکل کے کوئی دوسرے ہال میں چلا جائے، لیکن در حقیقت یہ ایک امت کی تبدیلی تھی۔ پچھلے پارے میں ہم مسلسل 10 رکوع تک بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کے واقعات پڑھتے آئے، اللہ تعالیٰ نے خوب موقع دیا ان کو، سنبھل جاؤ، 3 بار کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو نعمتیں، پہچانو تم کس کی اولاد ہو، اپنے باپ کی لاج رکھو، تم اسرائیل کے بچے ہو، कहते कहते जब उन्होंने बात ना मानी, खूब मौका दिया गया उनको, बात मान जाओ बात मान जाओ, जब ना माना और मुसलसल 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते ही रहे, थे मदीना में लेकिन इनके फितने मक्का में भी पहुंचते रहे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आ गए और ही तकलीफ इनको हुई। तकरीबन 1.5 साल तक अल्लाह के नबी सल्लम उसी कैफियत में रहे। अब वक्त आ गया था, यहूद को खूब मौका दे दिया था नबी, बिल्कुल उनके घर में लाके बिठा दिया कि शायद मक्का जाना तुम्हें मुश्किल है, चलो मदीना में तुम्हारे सामने आओ और कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने आपको तस्लीम नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया कि बस ख़त्म, इक्तदार ख़त्म, अब तख्ता उलट दिया जाएगा। कल तक बनी इसराइल को जो इज्जत और ऑनर हासिल थी, अब उसकी जगह उम्मते मुस्लिमा को लाया जा रहा है। किबले की तब्दीली सिंबल था, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, अलामत थी इस बात की कि कल तक बनी इसराइल और यहूद जिस मनसब जिस इज्जत की कुर्सी पे बैठे थे, अल्लाह ने इंसानियत की भलाई और खैर का काम उनके जिम्मे डाला था, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की जिम्मेदारी दी थी कि तुम मुआशरे के ताफुन को दूर करोगे, यहाँ की गंदगियों को दूर करोगे। लेकिन इन्होंने लोगों को बुराइयों से रोकने और नेकियों का हुक्म देने की बजाय आपस में लड़ना शुरू कर दिया, फिरकों में बट गए, कबीलों कुंबों पे फख्र करने लगे, दीनी अहकामात में तब्दीली कर ली और मजहब के नाम पे फिरके बना लिए। और जब ऐसा होता है ना, तो फिर दीनदारों का सारा वक्त आपस में झगड़े करने, तस्फिये करने, एक दूसरे के ऐब चुनने में लगने लगता है। नतीजा क्या होता है कि जो मुआशरे के फासिक टाइप के लोग होते हैं ना, उनको खुली छुट्टी मिल जाती है, शैतान खूब जोर लगा के उनको बुराइयों पे लगाता है। नतीजा क्या हुआ? मुआशरे में बेहयाई बढ़ती जाती है, बुराई बढ़ती है, लोग शराब पिए, लोग जुआ खेलें, बेचारे दीनदारों के पास वक्त ही नहीं रहता कि वो उनकी भी कोई हालत देखें। ऐसे काम करने लगे, खुश होते हैं कि अल्लाह करे ये आपस में लड़ते रहे, हर थोड़े दिन बाद कोई एक धमाका करा देंगे ताकि ये दीनदार एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं और हम जो गंदगी फैला रहे हैं वो फैलाते रहे। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने मनसबे इमामत से माजूल किया। कभी आपने कोई अखबार देखी हो किसी एक हिस्बे इक्तदार को गिरा कर हिस्बे इख्तलाफ सामने आ गई, तख्ता उलट गया? ये एक किस्म का ऐसा ही तख्ता उल्टा जा रहा है कौमियत की बुनियाद पे, और उम्मते मुस्लिमा को तैयार किया जा रहा है कि वह कज़ालिका। और इसी तरह, किस तरह कज़ालिका का लफ्ज़ पीछे से चल रहा है कि जिस तरह हमने किबले की तब्दीली का हुक्म दिया है, बिल्कुल इसी तरह हमने तुमको उम्मते वसत बना दिया, अब तुम बन गई हो उम्मते वसत। वसत का लफ्ज़ काबिल तवज्जो है, ये जहन में रखिएगा कि सीन पे जबर होगी तो ये वसत बनेगा, वस्त नहीं आप कहेंगे, बिल्कुल मानी बदल जाएगा। वाओ सीन जबर और ता, वसत का मानी होता है मिडल, बेहतरीन, यानी अदल है इसका मानी। इसके तीन मुख्तलिफ एंगल हम देख सकते हैं कि उम्मते वसत तुमको बना दिया, इसका एक मतलब ये है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो आला के मानों में, क्योंकि हर चीज़ का जो वसत होता है ना, जो मिडल पोर्शन होता है वो बेहतरीन होता है। आप और कुछ ना करें, रोटी को ही देख लें, जो सबसे बीच का हिस्सा होता है ना वो सबसे मजबूत होता है, किनारे गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन मिडल महफूज रहता है। आप किसी भी जगह बैठे, उसकी दीवारें गिर जाएं, उसके किनारे गिरें, लेकिन दरमियानी चीज़ मजबूत होती है। तो वसत का एक मानी क्या होता है? बेहतरीन। कुन तुम खैर उम्मत नुखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, ठीक है। इसी तरह इसका एक दूसरा मानी बनता है उम्मत वसत का, कि तुम मोतदिल उम्मत हो। मोतदिल कहते हैं बैलेंस्ड को, एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो तुम टेररिस्ट नहीं हो, तुम मिडल में रहने वाले हो, एतदाल है तुम्हारे अंदर, तुम बैलेंस्ड कौम हो। और तीसरा मानी है उम्मत वसत का, कि तुम अल्लाह और बाकी उम्मतों के बीच में एक वास्ता हो, मीन के मानों में रस्सी रोप। अब इन तीनों को हम इंशाल्लाह देख सकते हैं कि कैसे है। پہلی بات یہ کہ وجال ناکم، اور دیکھیں یہ فیصلہ کس کا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس فیصلے کی قدر پہچان سکیں، اور جو عزت اور آنر یہاں امت مسلمہ کو مل رہا ہے آج، اللہ ہی معاف کرے کہ اکثریت اس سے غافل، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں عزت کیا ملی ہے. پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، تم بہترین امت ہو، خیر امت، بہترین امت ہو. بہترین کون ہوتا ہے؟ کہ جو عدل پہ ہوتا ہے. جو عدل نہیں کر سکتا نا، وہ کبھی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے ترمذی میں، ابو سعید الخدری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ امت وسط سے مراد کیا ہے؟ کہ تم عدل والی امت ہو، یعنی بہترین امت ہو. کیا پتہ چلا کہ اس دنیا میں اگر عدل قائم کرے گی تو امت مسلمہ کرے گی، ٹھیک ہے؟ کل قیامت کے دن بھی یہ امت جو ہے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی، کیونکہ شہداء علی الناس کے لفظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو جب ہم اگلا معنی دیکھیں گے تو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے. دوسرا معنی آپ کے سامنے کیا گیا وسط کا، اعتدال سے، بیلنسڈ ریلیجن ہو. اب اسلام کا تقابل دوسرے مذاہب سے کر کے دیکھیے تو امت وسط ہر لحاظ سے بالکل معتدل ہے. کیسے؟ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں مختلف ہیڈنگز کے اندر. سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اعتقاد کو دیکھیے، عقیدے میں اعتدال کیا ہے. اسلام سے پہلے دنیا میں جتنے مذاہب تھے انہوں نے یا تو رسولوں کو قتل کر دیا تھا، یہود کی مثالیں ہم پڑھ چکے، یا رسولوں کو اللہ کے بیٹے بنا دیا، نصارہ کی مثال ہے، اور ان کی عبادت کرنے لگے، جیسے سورت توبہ میں بھی آتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ٹھیک ہے؟ ایک طرف نبی کو قتل کر دیا جائے اور دوسری طرف بیٹا بنایا جائے. اسی طرح صرف حضرت عیسیٰ کی ذات کو دیکھ لیں تو یہود نے ان کو ولد الزنا کہا، نعوذ باللہ، اور عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنایا، جبکہ اسلام میں کیا تھا؟ فرمایا کہ وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول اور کلیمت اللہ، اللہ کا کلمہ بنایا. اللہ کی ذات ایک ہے. پچھلے قوموں میں عقیدے کے نام پہ لاکھوں بت بنائے. ہندوازم میں 1 کروڑ سے زائد بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، بتوں سے مراد معبودوں کی. اگر آپ کمپیریٹیو ریلیجن پڑھیں تو ایک ایک قوم لاکھوں چیزوں کی پجاری ہے، سانپوں کے وہ ماننے والے، بندروں کی پوجا وہ کرنے والے، ہر وہ چیز جس نے فائدہ دیا اس کی پوجا شروع ہو گئے، کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی کسی کو. اللہ نے ہمیں عقیدے کے مطابق کیا اعتدال دیا کہ کل ہو اللہ احد یا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھی تیار کیے تھے وہ کتنے تیز تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر جگہ پیش کیا. بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ سورۃ الاعراف کے 24 میں آتا ہے فَاصْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جب انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا کہ جاؤ لڑو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ، تو انہوں نے کہا کہ تم بھی جاؤ اور تمہارا رب بھی جائے، نعوذ باللہ، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور جب وہ فتح ہو جائے گا تو ہمیں خبر دینا، ہم آ جائیں گے. اس کے برعکس اللہ کے نبی کے صحابیوں نے کیا کہا؟ کہ اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں برق الغیمات تک جانے کی بھی بات کہیں گے تو ہم وہ بھی مان لیں گے. تو لہٰذا اعتقاد اور عقیدے کے اعتبار سے اسلام سب سے زیادہ بیلنس ریلیجن ہے. یا تو یہ بھی نہیں سکھاتا کہ نفس کے پجاری ہو جاؤ اور خواہشوں کے غلام ہو جاؤ، اور یہ بھی نہیں سکھاتا کہ تم بالکل اللہ کو بھی چھوڑ دو. دوسرا اعتدال دیکھیے، عمل اور عبادت کا اعتدال ہے اسلام کے اندر، کیونکہ عقیدے کے بعد عمل اور عبادت کا تعلق ہوتا ہے، اس کا نام آتا ہے. پچھلی شریعتوں میں کیا ہوا کہ اللہ کے حکموں کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ دیا، رشوتیں لے کر اللہ کے احکامات میں تبدیلیاں کر دیں، غلط فتوے دیے، ہیلے اور بہانے کیے، پچھلے پورے پارے میں ہم پڑھ چکے. عبادت سے جان چھڑانے کے لیے کیا کچھ کیا، کچھ نے ترک دنیا کے نام پہ رہبانیت شروع کر دی، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، اور سختیاں جھیلنے کو عبادت اور ثواب کہنے لگے. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو رہبانیت کو ظلم قرار دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر مر مٹنے کے جذبے پیدا کر دیے. कैसरो किसरा के तख्त व ताज के मालिक बनकर दुनिया को ये दिखा दिया कि दयानत और सियासत और दीन और दुनिया में कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है। मज़हब सिर्फ मस्जिदों या खानकाहों में बैठ के इबादत करने का नाम नहीं, बल्कि ये दुनिया में चलते फिरते काम करने का नाम है। लिहाजा आज भी आप देखिए तो इस्लाम हमें कितना बैलेंस सिखाता है। दिन में 5 नमाजें पढ़ो, 1 घंटा लगा लोगे, 1.5 लगा लोगे, बाकी तुम मुआश के लिए निकलते हो तो भी तुम्हारी इबादत है, घर में बच्चों के साथ वक्त गुजारते हो तो भी इबादत है। यानी एक बैलेंस रिलीजन है, ये है दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना। फिर इसी तरह तीसरा अदल आप देखें तो मुआशरती और तमद्दुनी अदल है। मुआशरत और तमद्दुन को देखें तो पिछली कौमों का हाल क्या था कि इंसानी हकूक की परवाह नहीं, हक और नाहक का फ़र्क मिट चुका था, कोई किसी को मार दे, कत्ल कर दे, लूट मार करे आम बात थी, अमीरों के पास सब कुछ था, गरीबों के पास कुछ भी नहीं था। होते होते यहाँ तक बातें हुई कि औरतों को इंसानी हकूक देना तो दूर की बात है, उनको जिंदा रहने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, बचपन में उनको जिंदा मार दिया जाता था और जिंदा दफन किया जाता था, शौहर के साथ जला के सती करने की रस्म का रिवाज हो चुका था। इस तरीके से लोगों को बिल्कुल दूसरी तरफ कर दिया गया था। और अरब की मशहूर जंग एक थी, उसको बसूस की हर्ब कहते हैं, हरबे बसूस, मुसलसल 100 बरस तक जारी रही, जंगे बुआस 200 साल तक जारी रही। और इस तरह का दीन था कि जहाँ कुछ भी लगता था कि सही नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो दीन हुआ, औरतों के हकूक, मर्दों के हकूक, जानवरों के, बच्चों के, यतीमों के, मिस्कीनों के हकूक दिए, कैसे लगता है कि पूरे पिसे हुए तबके को इस्लाम ने इज्जत दी। फिर इसी तरह आप देखिए इक्तसादी और माली एतदाल कैसे है इस्लाम में, मनी मैटर्स में, कि दुनिया की हर कौम जो है उन्होंने इस मामले में भी गड़बड़ की। कुछ कहते थे जो कमा लो सब हकूमत का है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इश्तराकियत के नाम पे कि बस तुम कमाओ हकूमत सबको देगी। दूसरी तरफ कहा कि हलाल हराम की कोई शर्त नहीं और जो करो करना चाहो, बस मकसद यह कि दौलत कमा लो। इस्लाम ने आके क्या किया, बैलेंस सिखाया, सदके का निज़ाम बनाया, ज़कात का निज़ाम दिया, दौलत को गर्दिश दी। अगर आप पूरे दीन को सिर्फ इस एक लफ्ज़ की रोशनी में चेक कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये खुशी होगी सोच के कि अल्लाह ने हमें उम्मते वसत बनाया, मोतदल दीन दिया, हम बहुत बैलेंस दीन वाले लोग हैं। इसी तरह बहुत सारी और मिसालें हैं। यहूद ने दीन में सख्तियाँ कर ली हुई थी तकवा के नाम पर, और नसारा ने दीन को ठंडा ढीला कर लिया हुआ था शहवत के नाम पे। मसलन हालत हैज़ में यहूद जो थे वो औरत को इतना अछूत समझते कि उसके हाथ का खाते भी ना, अछूत समझते, और नसारा उसके साथ ताल्लुक भी कायम कर लेते थे। इम्बैलेंस हो गया ना। इस्लाम ने क्या कहा, एक ख़ास ताल्लुक के अलावा बाकी सब चीज़ें जायज़ हैं। तो लिहाजा ये था दूसरा मानी, वजालनाकुम उम्मतम वसता का। तीसरा मानी जो बहुत ही ज़्यादा अहम है वो क्या है कि उम्मते मुस्लिमा कौन सी उम्मत है, जो आखिरी नबी की उम्मत है। जब से दुनिया बनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तरीका कार किया था कि एक नबी आता तो साथ दूसरा आ जाता, मुख्तलिफ इलाकों में वो नबी लोगों को अल्लाह के दीन की तरह बुलाते रहे, काम चलता रहा, हुज्जत तमाम होती रही, जिनके दिल सच्चे थे उन्होंने मान लिया, जिनके दिल में खोट था वो ना मानते रहे। अब हुआ क्या कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं, ख़त्म, उनको दुनिया से जाना था, लेकिन क़यामत तक आने वाले लोगों तक ये दीन कैसे जाता, उनको इस्लाम की दावत कौन देता। तो अल्लाह ने ये ऑनर उम्मते मुस्लिमा को दी कि अब उन बेचारे लोगों तक तुम दीन लेके जाओगे जो मुसलमान घरामिने में पैदा नहीं हुए। ठीक है, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, लेकिन वही से उसके काम में सहूलत हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी उम्मते मुस्लिमा को, और वो ये थी कि ये पैगाम तुमने दूसरों तक लेकर जाना है। सूरत आल इमरान आयत 11 में हम इस पे तफसील से देखेंगे, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तूमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो दुनिया में भेजी गई, तुम अच्छे कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। तो लिहाजा हम तीन काम करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें इस मनसब पे कायम रखेगा। یہاں تک تلاوت سنیں گے.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.